اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللهم صل على
محمد المعظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم یہ ہمارے حضرت مولانا علامہ الحاج مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کا کرم ہے کہ انہوں نے اسٹیج پر لا کے بٹھا دیا. انہوں نے من آنم کی من دانا. ان کی نیت صحیح ہے تو میں بھی چلنے پھرنے لگا اور آ کر آپ سے خطاب کرنے کی جرأت محسوس کر رہا ہوں. اپنا معاملہ ہو یا دوسروں کا معاملہ, اس میں نیت کے خلوص کا بہت بڑا دخل ہے. نیت کی برکت صرف انسان ہی کو نہیں ملتی ہے, جس سے تعلقات ہوتے ہیں نیت کا اثر ان پر بھی پڑتا ہے. اگر بادشاہ ہے اس کی نیت صحیح ہے تو پورے ملک میں معاملات صحیح رہتے ہیں. اگر عالم ہے اور پرخلوص عالم ہے تو اس کے تمام معتقدین پر اس کا خوشگوار اثر ہوتا ہے. اگر پیر ہے تو مریدین پر اس کا اثر ہوتا ہے. مدرس ہے اور خلوص کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس کا فیض اس کے طالب علموں پر ہوتا ہے. یہ ہے نیت کے خلوص کا معاملہ. حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک بادشاہ تھا, بہت انصاف پسند بادشاہ تھا. وہ شکار کی غرض سے بیابان اور جنگلوں میں پہنچا. شکار کے پیچھے تب وہ دو کی دوڑا. گرمی کا زمانہ تھا, پیاس لگی تو ایک بستی میں پہنچا اور وہاں کے ایک باغبان سے, جس کے کھیت اور پھلوں کے باغات تھے, اس نے پانی مانگا. تو اس کے سامنے اپنے انار کے درخت سے ایک پھل توڑا اور اس کو نچوڑا تو ایک گلاس جوس اور رس انار کا اتنا نکلا کہ بڑا سا گلاس وہ بھر گیا. بادشاہ دیکھتا رہا ایک انار پورے گلاس کو. آج کے گلاس میں آگ کا تو چور گلاس ہوتا ہے, نیچے خوب پتلا اوپر بھر. دیکھنے میں لمبا ہوتا ہے اور مال اس میں کم ہے. اس زمانے کے گلاس اوپر اور نیچے دونوں اقسام ہوتے تھے, پٹھانی گلاس ہوتا تھا. ایک انار میں اتنا رس, پورا گلاس بھر گیا. किया तो बहुत मीठा। बादशाह ने सोचा इसके बाप पर मैं कब्जा करूंगा। दिल में सोचा उसने, फिर उसने किसान से कहा, बागबान से, भी एक गिलास और मुझे शरबत पिलाओ, जूस अनार का पिलाओ। वो गया अनार तोड़कर उसी साइज का लेके उसी बाग से आया, लेकिन निचोड़ा तो आधा नहीं, आधे से कम उसने गिलास में कर दिया। तो दूसरा तीसरा तीन फल तोड़ा, तब जाकर के उसका गिलास। बादशाह ने उससे कहा, पहले तो एक ही अनार में तुमने पूरा एक गिलास भर दिया था, अब तीन तीन अनार निचोड़ रहे हो तब गिलास भरना। तो उस बूढ़े ने कहा, हमारे बादशाह की नीयत में फर्क आ गया। उस जमाने के देहाती और किसान भी कितनी फरासत रखते थे और कितने सच्चे थे। उसने ये नहीं कहा कि साहब पक्का हुआ था, बहुत पक्का था, और ये थोड़ा कच्चा था इसलिए उसे, ये सब नहीं था। डायरेक्ट कहता है कि शायद हमारे बादशाह की नीयत में खलल आ गया है, फुतूर आ गया है। हालांकि वो बुड्ढा नहीं जानता था कि ये बादशाह। बादशाह को ये सांस हुआ, मैंने दिल से सोचा था कि घर जाने के बाद, अपने महल में जाने के बाद सिपाहियों को भेजूंगा कि जाओ इस बात का पढ़ना कर लो। ये तो दिल में सोचा था, जाहिर नहीं किया था। कभी कभी जाहिर नहीं किया जाता है, फिर भी उसका असर दूसरों पर पड़ता है। मेरे सामने उसकी एक मिसाल है, ये माइक है, इसका वायर किधर है, वायरलेस है ये। पहले के माइक आते थे उसमें वायर होता था, मालूम होता था ये एम्पलीफायर तक गया है, फिर यहां से बोलता है, वहां आवाज पहुंचती है, फिर हार में जाता है, देखने में नजर आता है। लेकिन अभी बोलिए आप, वायरलेस हो गया, वायर नहीं है, लेकिन सारे मजमे को आवाज सप्लाई करना। ऐसे ही एक नीयत तो जबान से जाहिर होती है और एक नीयत वायरलेस होती है, लेकिन उसका भी असर होता है। ये दिल के अंदर जो नीयत है, जबान उसकी वायर है, जाहिर कर दे मैं ऐसा करूंगा, और एक वायरलेस माइक है कि वायर नहीं है लेकिन कहेगा मैं सबको सुनाऊंगा, है ना। वायर वाला भी सुनाता है, वायरलेस भी सुनाता है। जबान से नीयत का इजहार करो, उसका भी असर पड़ता है, और ना करो तो उसका भी असर पड़ता है। ये न्यू टेक्नोलॉजी ने इस बात को वाजे कर दिया। बादशाह को बड़ी हैरत आई कि मैंने ही सोचा था कि इसके बाप पर बादशाहाना कब्जा करूंगा। फौरन उसने अपने इरादे को बदल दिया, तौबा कर दिया, और आजमाने के लिए उस बागबान से कहता है कि एक गिलास और लाओ। फिर वो एक गिलास लाया और एक फल तोड़ करके लाया, निचोड़ा तो पूरा गिलास भर दिया। बोला ये क्या मामला, कहा कि अब बादशाह की नीयत सही होगी, अब बादशाह की नीयत सही हो गई। इसका मतलब ये है कि बादशाह एक मुल्क का वाली और हाकिम है। एक बादशाह अगर सच्चा है, नीयत का साफ है, तो पूरे मुल्क में शांति रहेगी, और दिल ही में अगर गड़बड़ी है, मशीन में गड़बड़ नहीं समझ, ताकि वो ठमको नहीं। फिर भी मुल्क में शांति नहीं अशांति। ऐसे ही बादशाह का दिल अगर वो ओट वाली पेटी बिगड़ी न बिगड़ी उससे कोई हमको मतलब नहीं। ये दिल की पेटी अगर सही रहती है ना तो पूरा मुल्क सही रहता है, और अगर ये बिगड़ी तो सारे मुल्क में शांति के बजाय अशांति हो जाती। नीयत का बहुत बड़ा दखल है। नीयत सही रखना इन इदारों का मकसद यही है। तज़किया नफ्स, नीयतों को सही बनाया जाए। नीयत सही होती है तो हर पीर अपने मुरीद को सही कर लेता है, हर मुदर्रिस अपने शागिर्द को सही कर लेता है। तरबियत जबान से और छड़ी से मार मार के तरबियत नहीं होती है, अपनी नीयत को सही कर लो तरबियत होती चली
जाएगी।
ये नीयत का बहुत बड़ा दखल है। एक है फुलूस और एक है खुलूस। फुलूस कहते हैं पैसे को और खुलूस कहते हैं दिल की सच्चाई को। फुलूस जबरदस्ती काम करवा लेता है। अभी अलहरी साहब ने एक बात कही है कि मोतसिम बिल्ला ने फुलूस से काम लिया था तो सारा मुल्क तबाह हो गया। अगर वही खुलूस से एक डाकू उसको खुलूस की तलकीन कर रहा है कि अगर तुमने सोना चांदी जमा न किया होता, इसे बेच बेच करके अपनी रियाया पर खर्च किया होता तो याद रखना फुलूस चला जाता, फुलूस जमा हो जाता। फुलूस को खर्च करो और फुलूस को दिल की तिजोरी में जमा। तो एक गंवार बच्चा भी तुम्हारा वफादार हो जाएगा। खुलूस वो सच्चाई है। जो औलियाए किराम होते थे वो औलियाए किराम की सारी तबलीगी कोशिश, तरबियती अंदाज, सलूक का भेद लोगों को जबान से नहीं बल्कि अपने खुलूस से समझा दिया करते थे। तो ये खुलूस हर एक की जिम्मेदारी है। अगर वाकई घर के मालिक हो, सरपरस्त हो और सबके साथ इंसाफ का जज्बा और खुलूस का अंदाज रखोगे तो तुम्हारा घर जन्नत निशान बन जाए। एक मिसाल मिल बैठा है, मैंने बैठा है कहा बच्चा समझ करके, लेकिन ये बैठे हैं अंदर। आप कहें बैठे हैं, मैं कहूंगा बैठा है। ये अपने अपने मकाम और स्टेटस की बोली है। इनमें खुलूस था, इनके पास खुलूस नहीं था। ये एक एक आर्च इनके खुलूस की जीवन है, ये गुंबद इनके खुलूस का ऐलान है, ये आगे पीछे की इमारतें इनके खुलूस का एक समरा है। अगर खुलूस न होता तो मौलाना गुलाम मुस्तफा धान पान में यूं हवा में उड़ जाते, लेकिन जब खुलूस होता है तो बड़े बड़े तूफान भी कमजोरों को संभाल लिया। खुलूस एक चट्टान है जिसमें पैदा हो गया वो उड़ नहीं सकता, बह नहीं सकता। उसकी एक मिसाल दीजिए, पत्ता कितना हल्का होता है जो सूख करके दरख्त से नीचे गिरा, उसकी कोई ताकत नहीं है, कोई वजन नहीं है। हवा का मामूली झोंका आता है तो तीन कुलाटियां चार कुलाटियां अंदर खाता है, उधर खाता है। एक कमजोर पत्ता है, लेकिन दोस्तों अगर ये किसी पत्थर के नीचे दब जाए, 10 किलो का पत्थर उसके नीचे ये दब गया, अब आंधी आए चाहे आंधी की मां आए, बुढ़िया आंधी आए या जवान आंधी आए, ये जब उस पत्थर के नीचे दब गया, ऐ आंधी आ चाहे जा, तेरा जोर खत्म होगा और मुझ पर तेरे जोर का कुछ असर नहीं। एक कमजोर पत्थर, उसका ये असर नहीं है, उस चट्टान का असर है जिसके दामन में हो रहा है। याद रखना, खुलूस एक पहाड़ है, खुलूस एक चट्टान है, जो इस चट्टान के नीचे आ गया उसको जमाने की चीरा दस्तियां कभी इधर से उधर आवारा नहीं बना सकती। समझ गए? तो ये है खुलूस। खुलूस लो, खुलूस तो आता है चला जाता है, लेकिन खुलूस जब आता है तो सबको संभाल देता है। खुलूस जब पैदा होता है तो माहौल खुशगवार बन जाता है। खुलूस जब पैदा होता है तो समाज समझ जाता है। खुलूस जब आए के अंदर आता है तो बड़ी से बड़ी बागी फौज उसके कदमों पर शीश नवाई पड़ती है। ये है खुलूस, और इसी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात। बुखारी की पहली हदीस है, सारे कार्यक्रम और सारे अमल का दारो मदार नीयत पर है। ये नहीं फरमाया अच्छी नीयत हो या बुरी नीयत। अच्छी नीयत है तो सारा काम अच्छा बनता चला जाएगा, और अगर बुरी नीयत है तो सारे काम मनहूस बन करके बिगड़ते चले जाएंगे। ये मदारिस, ये दरसगाह और पीराने निजाम की खानकाह यही काम करती है कि जिनकी तरबियत दरसगाह या खानकाह में हो उनके दिलों में खुलूस पैदा किया जाए, और जब खुलूस पैदा होता है तो खानकाह से जुड़ा हुआ भी बड़ा मुखलिस होता है। जब खुलूस पैदा होता है तो दरगाहों से जो वाबस्तगी हासिल करता है वो भी बड़ा खुलूस होता है। मौलाना अजहरी साहब ने इशारा किया कि उस जमाने के बुजुर्गों में कितनी बरकतें थी, तो ये बुजुर्ग बरकत लेकर नहीं आते हैं, अल्लाह का, रसूल का, उनके मशायख का फैजान लेकर के गली कूचे में चलते हैं, तो उनकी नीयतों का फैजान हर एक के बिगड़े हुए दिलों को संवार दिया करता है। इसलिए इन मदरसों की हिफाजत करो, ये सब खुलूस की सौगात और गिफ्ट बांटते हैं। इनके वाज और नसीहत में जब खुलूस होता है तो फारसी का एक डायलॉग और मकबूला है कि अज दिल रेजत, अज दिल रेजत बर दिल रेजत। जब दिल से निकलती है कोई चीज तो दिलों पर डायरेक्ट जाकर उसका असर भी होता है। इकबाल ने कहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। उसको पर नहीं होता है लेकिन परवास उड़ने की ताकत होती है। ये दिल से बात निकलने का मतलब यही है कि अगर नीयत में खुलूस है तो उसका असर सामने वाले पर पड़ता है। मेरे दोस्त अल्लामा अजहरी साहब और सैयद गाजी रिब्बानी साहब, इन दोनों हजरात को अगर देखा जाए तो इनमें खुलूस की दौलत बहुत ज्यादा है। मैं करामत बयान करने के लिए नहीं आया हूं। गाजी रब्बानी साहब मुनकसर मिजाज थे, और जहां उनको ठहरा दिया जाए ठहर जाते थे, जो खिलाया जाए खा लेते थे। कभी उन्होंने अपनी सताइश और खुद नुमाई का जज्बा नहीं पेश किया। ये उनका खुलूस था कि सूरत में उनके रूहानी फैजान से एक इलाके को अल्लाह ताला ने संभाल दिया। जहां जहां खुलूस होता है वहां पर संभलने वालों की तादाद सिमटती बढ़ती चली जाती है। अल्लाह ताला इन दोनों बुजुर्गाने दीन के सदके में हम सबको बिलखसूस उनके मुहिदीन को खुलूस अता करें। और जब खुलूस होता है ना तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? तू वैसा, वो वैसा, ये डबल पैसा, वो वैसा, ये क्यों होता है? خلوص نہیں ہے تو لڑائی جھگڑا ہے, اور خلوص ہو تو بھیا ساری معاف کرنا, تم کو تکلیف ہو گئی, یہ ہے خلوص کی بولی. اور خلوص اگر ختم ہو گیا تو بھی ایسی بھی تیسی, اس سے پتا چلتا ہے خلوص کا اور خلوص کی خرابی کا. لڑائی جھگڑا جو کرتے ہیں یاد رکھنا اس میں خلوص نہیں ہوتا, خلوص ان میں ہے جو لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے دلوں کو ملا دیتے ہیں. اور جب دل ملتے ہیں تو کان لہم بنیان مرسوس کا جلوہ نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں تم ایسے مضبوط ہو جاؤ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. آپ اینٹ اگر دیوار میں ایسے ہی ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیں دیوار تو بن جائے گی, مضبوط نہیں, لیکن اگر اس میں سیمنٹ کا گارا پلا دیا جائے تو دیوار بہت مضبوط ہو جائے گی. اور پہلے زمانے میں سیسا پگھلا کر کے اینٹ کے درمیان میں سیمنٹ کے بجائے رکھا جاتا, سیسا سمجھے یہ کانچ نہیں, وہ لو طرح ہے جس سے ایئر گن کا چھرا بن رہا ہے, کارتوس میں جس کے چھرے ہوتے ہیں بڑا وزن ہوتا ہے, اس میں کالا کالا ہوتا ہے, اس کو پگھلا کر کے کسی چیز کے درمیان ٹوٹی ہوئی چیز کے درمیان جوڑ دیا جائے تو وہ چیز ٹوٹ جائے گی, جوڑ نہیں ٹوٹے گا, اتنا مضبوط ہوتا ہے. اسی کو قرآن فرماتا ہے کأنہم بنیان مرصوص, جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں وہ ایسے مضبوط ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. خلوص وہ سیسا ہے کہ جڑے ہوئے دلوں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا جاتا ہے. اے میرے بھائیوں, سب سے بڑی نصیحت اس زمانے میں یہ ہے آپ سب میں خلوص کا جذبہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ ہونا چاہیے. اگر یہ خلوص آپ نے پروڈکٹ کر لیا جتنے ٹوٹے ہوئے دل ہیں سب جڑ جائیں گے, دور کی رشتے داریاں قریب ہو جائیں گی اور قریب کی رشتے داری قریب سے قریب تر ہو جائے گی, تمہارا دشمن بھی وقت پڑنے پر تم پر جان دینے کے لیے قربان ہو جائے گا. یہ نیتوں کا, نیتوں کو سنبھالنے کا آج کے زمانے میں بہت بڑا جہاد ہے. جس نے نیت کو پرخلوص بنا دیا وہ وقت کا سب سے بڑا مجاز ہے, اور اس کے اس جہاد کا اثر اس کے ارد گرد آس پاس پر ہوگا. میں طلبہ کو علماء کو یہی نصیحت کر رہا ہوں اور مجھے نصیحت کرنے کا اس عمر میں حق بھی ہے. آپ حضرات میں اپنے اندر خلوص پیدا کرو, سامنے والے پر براہ راست اس کا افیکٹ ہوگا, اثر ہوگا, اور تعلیم ہو, تربیت ہو, گھر کا انتظام ہو, مساجد اور خانقاہوں کے اندر جو اہتمامات ہیں سب پر اثر پڑے گا اور ماحول خوشگوار بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس طرح اپنے ایمان کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن اور آخری دم تک مسلک پر قائم و دائم رہنے کی توفیق رکھے. آمین.